वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज राधाष्टमी है। भगवान के हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस, इस कारण से यह परम मंगलमय दिन है। इस दिन राधा रानी का स्मरण करना विशेष कर्तव्य है। श्रीमद्भागवतम क्लास का समय है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है समाज में भी लोक में कि श्रीमद्भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। वास्तव में श्रीमद्भागवतम में किसी गोपी का नाम नहीं है, केवल यशोदा का है, भगवान की माँ। और भगवान की बहुत सी प्रियाएं हैं, उनका नाम नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उनका कोई नाम नहीं था। नाम सबका रहता है, समवेत संघ में उनका वर्णन है, इसलिए एक विशेष नाम नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का चरित्र दिया गया है स्पष्ट, और उसको पढ़ने पर सुनने पर साफ समझ में आ जाता है कि हाँ यही राधा रानी है, और इनका नाम है राधिका या राधा। तो प्रसंग मैं यहाँ कहने की चेष्टा करूँगा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, आप सबकी कृपा से। छूटा हुआ है 7 महीने से मेरा पढ़ना होना, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने का। उसमें भागवत का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, उसकी आवृत्ति करेंगे। ललिता जी के द्वारा बोला हुआ यह श्लोक है। अनया राधितो नूनम, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, जन्मो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयग्रहः। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, जन्मो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयग्रहः। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, जन्मो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयग्रहः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, जन्मो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयग्रहः। अनयाराधितो नूनम भगवान सर्वेश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीत यामनयद्रह अनाराधितो नूनम्
भगवान
हरीश्वर तो या मनयद रह अनया इस स्त्री के द्वारा इस गोपी के द्वारा आराधित परम आनंदित हुए हैं भगवान परम सुंदर हरि ही संपर्क मात्र से सबका अमंगल हरने वाले ईश्वर सबके नियंता जत यही कारण है कि न हम सबको विहाय त्याग कर प्रीतः इस सखी से प्रसन्न होकर याम जिसको अनयद ले गए हैं रहा एकांत रास लीला का ये प्रसंग है। ये मंदिर रास बिहारी जी का है तो इसलिए इस मंदिर में थोड़ी रास की चर्चा तो बहुत उपयुक्त है। श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं इस छोटे से प्रसंग को कह रहा हूँ। रासलीला का एक थोड़ा सा अंश है, उसी में राधा रानी का नाम है। गोपियों की प्रार्थना सुनकर प्रणय गीत सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रास प्रारंभ किया। परस्पर हाथ मिलाना नाचना और जो भी प्रिय प्रियतम के चेष्टाएं हो सकती हैं वो सब भगवान कर रहे थे। देखो कि नाच नाच कर रहे थे तो सबका लिंगन कर रहे थे निर्विशेष भाव से सबको एक समान। तो इस कारण से कुछ गोपियों को बहुत बड़ा मद हुआ कि मैं संसार में सबसे बड़ भागने स्त्री हूँ, आज भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार हमें सम्मान मिल रहा है। और एक गोपी उसमें ऐसी थी जिसको मान आ गया। मान का अर्थ होता है कुछ क्रोध, प्रेम के क्रोध को मान कहते हैं, रुष्ट जाना, रुष्ट हो जाना। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं भगवतः कृष्ण लब्धमान ब्रजस्त्रिय आत्मानं मेरे स्त्रीणा मानी न्योभ्यधिकं भूय। इस प्रकार परमेश्वर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इतना बड़ा सम्मान मिला, अपनी प्रिया समझ करके कंठ में बांह दे करके नाचते थे। तो इस कारण से उन स्त्रियों में मद आ गया कि प्रत्येक को ये भाव हुआ कि मैं इस संसार में समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ हूँ। वास्तव में श्रेष्ठ है, कोई मद कोई संसारिक मद नहीं था। परंतु एक सखी ये सोच करके आज इन्होंने सबको समान बना दिया, हमको कोई स्पेशल आदर नहीं रहा, वो सबसे श्रेष्ठ थी, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ थी, तो उसको क्रोध आया कृष्ण पर कि आज हमको सबके बराबर कर दिए। तो इसलिए उसने कृष्ण से बोलना उनके साथ नाचना छोड़ दिया। वो धीरे से हट गई उस गैंग से और किनारे बैठ गई, उसको मान आ गया। तो तासां तत् सौभग मदम वीक्ष मानम चके सवह प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान ने देखा कि हमारी प्रिय गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया है, अपने को बहुत बड़ा समझने लगी और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी थी उसको क्रोध आ गया। किसी से बहुत ज्यादा प्रेम कोई करे और किसी समय न करे तो उसको क्रोध हो जाता है सामान्य व्यवहार करने से। तो उस श्रेष्ठ सखी को क्रोध आ गया था, तो भगवान ने उसका मान खत्म करके उसको मनाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए उसको प्रसाद आया और प्रसम आया। प्रसम आया का अर्थ है मद प्रसमन के लिए और श्रेष्ठ सखी को प्रसन्न करने के लिए अंतर्धीयत, अंतर्हित हो गए, वहीं पर छिप गए थे। अकस्मात तो श्री गोपियों का जीवन ऐसा है कि वे पलक गिरने भर भी कृष्ण का वियोग नहीं सह सकती हैं। पलक गिरना भी उनके लिए कोटि युग जैसा होता था। और रात्रि के समय जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके छिप गए तो इसके बाद अब सबका मद टूट गया, मान टूट गया, लगी जोर जोर से रोने, खोजने लगी कृष्ण को इधर उधर। अंतरहिते भगवती सहसै व ब्रजांगना अतप्यस्तम तक क्षणा करीण इव जुथपम। जैसे हथिनियों के बीच से उनका पति हाथी अदृश्य हो जाए, न रहे तभी बहुत डर जाती हैं जंगल में सिंह आदि से, इस तरह से गोपियां विकल हो गईं, तड़पने लगी और वे अब अपने प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में बात करने लगी और पूछने लगी सब जगह। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की चाल और उनका प्रेम, उनकी मुस्कान और आंखों से इशारा करना इत्यादि, इसका इतना गाढ़ स्मरण हुआ कि उनका चित्त विचित्र हो गया और भगवान की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। श्री कृष्ण कैसे हंसते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, इन्हीं का वे अनुकरण करने लगी। यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गति स्मित प्रेक्षण भाषणा दिशु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ मूर्तय असावहम तीर्थबलास्तदात्मिका नेवी दुसु कृष्ण विहार विभ्रमा। कृष्ण की चाल, कृष्ण की मुस्कान और कृष्ण की अन्य सब चेष्टाएं उनके हृदय में इस तरह छा गई कि ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण है। उसको भाव भी हो गया असल अहम, यह कृष्ण मैं हूँ, कृष्णमयी हो गई तदात्मिका। गीत गोविंद में जयदेव जी लिखे हैं कि मधुरपुर अहमति भावनशीला मुहूर्व लोकति मंडन लीला मधुरपुर अहमति भावनशीला। गोपी कृष्ण के चिंतन में इतना तल्लीन हो गई है कि वो यही सोचते है कि मधुरपु अहम, मैं ही मधुसूदन हूँ। मुहूर अवलोकित अवलोकति मंडन लीला, श्रृंगार लीला का स्मरण करे, देख रही है और सोचते है मैं ही कृष्ण हूँ, अपने गुण पर स्वयं ही लुब्ध है। यही दशा हुई प्रत्येक गोपी की, वही समझ असौ अहम, यह कृष्ण मैं हूँ, कृष्ण में हमें कोई भेद है ही नहीं, कृष्ण अपने को समझ करके और फिर भी कृष्ण को खोजने लगी। गायंत उच्च रमुमेव संघता बिची किरुन्मत कवच बना बना, सभी गोपियां उच्च स्वर से गाने लगी। कृष्ण थोड़ी दूर गए होंगे तो हमारा गीत सुन करके आ जाएंगे, हमारा कंठ स्वर पहचान लेंगे। तो सभी उच्च स्वर से गाने लगी, संघता सामूहिक रूप से, और पागल की तरह खोजने लगी भगवान को। विचिक्की उन्मत्त कवत, उन्मत्त की तरह खोज अन्वेषण करने लगी, कुंजों में वृक्षों में वृक्षों से पूछने लगी, पत्थर से पूछने लगी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह कृष्ण के विषय में पूछने लगी। पूछते पूछते ऐसा हुआ आवेश, इतुन मत बचो गोप्य कृष्णान्वेषण तत्परा लीला भगवतस्तास्ता हीन चक्रुस्तदात्मिका। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की थी उन लीलाओं का अनुकरण करने लगे। कृष्ण के चिंतन का इतना प्रभाव है, इतना गाढ़ है आवेश हुआ कि वो यही सोचे नहीं हम कृष्ण हैं, और कृष्ण की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी जो ब्रज में हुई थी। जैसे कस्याचित पूतनायंत्या कृष्णायंत पिबतस्तन तोकायित्वा रुदत्तन्या पदा छक्टायते। एक गोपी पूतना के चेष्टा का अनुकरण करने लगी और तुरंत ही एक गोपी को बच्चे की तरह पकड़ करके और स्तन पिलाने लगी। वो गोपी स्तन पी नहीं रही थी, केवल पीने का अनुकरण कर रही थी, लेकिन भाव है। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई गोपी पूतना का अनुकरण कर रही है तो उसमें पूतना का भाव नहीं आया है, भाव केवल कृष्ण का है, कृष्ण के कारण ये सब हो रहा है। तो पूतना बन करके वो गोद में उठाई तो वो जो कृष्ण बनी हुई गोपी थी कृष्ण का अनुकरण करे, वो उसके स्तन को पीने लगी, मतलब पीने का अनुकरण कर रही थी केवल, उतना से सटा करके पी नहीं रही थी। ये लीला होने लगी है। और तोकायित्वा रुदत्तन्या, एक अन्य गोपी बच्चे की तरह रोने लगी, पैर पीट करके, जैसे श्री कृष्ण छकड़ा के नीचे सुलाए गए थे और पैर उछाल उछाल करके रो रहे थे, तो वैसे ही वो गोपियाँ यहाँ करके रोने लगी, जैसे भूख लगी है बहुत, बच्चे की तरह। और उसके इस भाव को देख करके एक दूसरी गोपी सकट बनकर उसके ऊपर ऐसे पैर से हाथ से छा गई सकट की तरह। तो वो रोती हुई गोपी अपने पैर से थोड़ा मारी तो वो धीरे से उलट गई गोपी। तो इस तरह से सकट भंजन की लीला हुई। पदा हाथ छकटाया थी, एक सकट बनी हुई गोपी पैर से मार दी, पैर से मारे जाने पर उलट गई छकड़े की तरह, सकट की तरह। दैत्या इतवा जहर अन्यमेका कृष्णार्थ भावना, और एक गोपी कृष्ण भावना में मैं कृष्ण हूँ बच्चा हूँ इस तरह से सोचे और बैठी। तब तक दूसरी गोपी प्रणवल्प बन करके उसको उठा ली, वो अपने ओढ़नी को ऐसे फहराती हुई आई बवंडर की तरह और उठा करके ले गई। सब में केवल कृष्ण ही थे, हृदय में वाणी में सब जगह। इस तरह से लीलाएं होने लगी और कृष्ण राम आई थे देतु गोपायस्तक्ष गोपायंतस्त काश्चन वत्सयतिम हंति चान्याम तथेका बकायतिम। दो गोपियां कृष्ण और बलराम बनी, उनको बना कि हम कृष्ण हैं हम बलराम हैं, गोचारण के लिए चल दिए, वत्स चारण के लिए, बछड़ा चराने के लिए। और गोपियां जो थी वो गोप बन गई, गोप के कारण करने के हम गोप हैं और एक कृष्ण बलराम है। उसी में एक गोपी ने अनुकरण किया वत्स सासुर का, वत्स बन करके पैर से और हाथ से चलते हुए से आई बछड़ा बन करके, तो उसको एक गोपी ने कृष्ण बलराम में से एक ने उसके पैर पकड़ कर पटक लिया, तो पटका नहीं, जैसे आप देखते हैं कि आजकल के नाटक में सिनेमा में भी कोई मारता है कितना जोर से दिखने में लगता है, लेकिन उनकी कला होती है वहाँ कुछ होता नहीं है, दिखने वाले लगते हैं कि यहाँ घाव हो गया, खून बहने लगा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है वहाँ। जब मनुष्यों में ये सब बात है तो वहाँ तो केवल प्रेम राज है और कृष्ण की लीला का घना आवेश है। तो वत्सासुर बने हुए गोपी को उसने पटक दिया और एक फिर बक बन करके बकासुर, उसने अपने हाथों को ऐसे फैला करके मुंह खोल करके कृष्ण को निगल जाना चाहा। वो कृष्ण गोपी ही कृष्ण बने हुए तो कृष्ण को निगलना चाहा, लेकिन उस गोपी ने उनके हाथ को पकड़ कर ऐसे किया जैसे चोंच फाड़ दिया है। वियोग है कृष्ण का, लेकिन इसमें कृष्ण की लीलाएं चल रही है। कस्यचित् स भुजं न्यस्य चलन्त्याह परानन्नो कृष्णो हम पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनः। और एक गोपी कहने लगी मैं कृष्ण हूँ, देखो मेरी ललित गति को, देखो मेरा नृत्य देखो, मैं कितना अच्छा नाचता हूँ, कितना अच्छा गाता हूँ, मेरी सुंदर चाल देखो, मैं कितना अच्छा चलता हूँ। और दूसरी गोपियाँ प्रशंसा करने लगे, वाह धन्यवाद धन्यवाद। वो गोप बनी हुई थी गोपियाँ तो प्रशंसा करती हैं, मित्र तुम बहुत सुंदर नाचते हो, बहुत सुंदर गाते हो, धन्य है धन्य है, ऐसा तो गंधर्व भी नहीं गा सकते। और उनके बांसुरी वादन की प्रशंसा करती हैं। तब तक एक गोपी ने कहा तत्री को वाच हे गोपाल दलाग्निम पश्य तोल वरम। एक गोपी ने कृष्ण के आवेश में कहा कि अरे गोपों ये देखो देखो भयंकर आग लगी है वृंदावन में, दवाग्नि चक्षुषी आसुपिदा ददम, तुम लोग जल्दी से जल्दी शीघ्र ही अपनी आंखें बंद कर लो और मैं इससे रक्षा करूंगा। और यह कहकर के वो अपने पीले ओढ़नी को जिसका रंग अग्नि के समान था, लाल अग्नि के लपट के समान, उसको लेकर के अपने मुख में कह के मैं इस आग को पी रहे हूँ, तुम लोग डरो मत, शांत रहो, मैं इस अग्नि से रक्षा कर लूंगा। और वो अपने ओढ़नी को ऐसे मुख में थोड़ा रख ली, पीछे हटा ली कि आग की लपट खत्म हो गई। सिर्फ गोप बनी हुई सारी गोपियां फिर प्रशंसा करने लगी, इस तरह की लीलाएं चल रही थी। तब तक एक दूसरी गोपी कृष्ण के आवेश में कहती माँ भाईष्ट डरो मत, बात वर्षा भयम तप त्राणम विहितम माया, तुम इस भयंकर आंधी से और वर्षा से डरो मत, इससे बचाने का उपाय मैं कर लिया हूँ। यह कहकर उसने अपने ओढ़नी को ऐसे फैला के ऊपर किया और कहा इसके नीचे सब आ जाओ, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस तरह से ओढ़नी को ऊपर कर लिया और गोवर्धन धारण किया। इस प्रकार लीला हो रही थी। और एक गोपी तुरंत ही जसोदा जी के भाव में हो गई, तो वो एक गोपी को अपनी माला से बांध दिया, अपनी बनमाला निकाल करके और उससे बांधा। बांध करके लगी डांटने, अरे नटखट, अरे मंथनी स्फोटक, अरे माखन चोर, फिर चोरी करोगे। तो वो जो कृष्ण बनी हुई गोपी थी वो कहती है, मैया क्षमा कर दो, इस बार अब मैं नहीं मटका फोड़ूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा। वो पूरा पूरा डरने का अनुकरण कर रहे थे। बद्धा नया सजा काचित तनवी तत्र उल्लू खले, और एक गोपी उखल बन गई, ऐसे बैठ गई तन करके उखल बन गई, तो उसी से कृष्ण को बांध दिया गया, यशोदा ने बांधा। कृष्ण बनी हुई गोपी रो रही थी, बार बार प्रतिज्ञा कर रहे थे कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी गलती नहीं करूंगा, मैया मुझे मत मार, मत मार। और वो गोपी हाथ में छड़ी लेकर के धमका रही थी। कृष्ण ने जो डायरेक्ट लीला किया यशोदा जी के साथ, उससे एक कम मधुर नहीं थी लीला। इस तरह से लीलाएं हो रहे थे। जो गोपी लीला करते करते सारी लीलाएं याद आ रही थी और कर रहे थे, एक गोपी तुरंत ही पेड़ की शाखा पकड़ ली और शाखा पकड़ कर थोड़ा ऊपर होकर के और दूसरे गोपी के मस्तक पर लात दे करके बोली, उसके मस्तक पर लात दे करके कही, अरे दुष्ट सर्प, तुम यहाँ से चले जाओ, काली द्वार से, जानते नहीं हो मैं दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लिया हूँ, खलों का दमन करने के लिए मैं जन्म लिया, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ काली द्वार। वो पेड़ पकड़ करके और पैर को रखे थे गोपी के ऊपर कृष्ण के आवेश में, तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ, यहाँ खलों को नहीं रहना है, तो मैं खलों का नाश करने के लिए अवतार लिया हूँ। इस तरह से लीलाएं करने लगी। बहुत लीला करते करते क्या हुआ, एवं कृष्णम पृछ माना वृंदावन लता स्तरुण व्यचक्ष बनो देशे पदानि परमात्मना। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते करते और कृष्ण को पूछते पूछते लोग आगे बढ़े। तो पूछ रहे थे तो अकस्मात उन्होंने देखा, व्यचक्षत बनो देशे पदानी परमात्मना, परमात्मा के चरण कमल को देखा। श्री कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है जो सबसे अधिक कंप्लीट सबके हृदय के ज्ञाता है, तो परमात्मा, अथवा परम प्रिय। आत्मा का अर्थ होता है अपना, प्रिय, कृष्ण परम प्रिय है, तो अपने परम प्रिय श्याम सुंदर के चरण चिन्ह को देखी, खोज रहे थे उनको देखी। इसके पहले वे वृक्ष से पूछ रहे थे, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे नेग्रोल, हे पाकड़, हे पीपल, हे बरगद, क्या तुम कृष्ण को देखे हो, हमें बताओ, हम उनके भी नंबर रहे हैं, कहाँ गए हैं, यहीं कहीं छिपे होंगे। सबसे पहले गोपियों ने पूछना चालू किया बड़े बड़े वृक्षों से। गोपियों ने सोचा कि इनको तो ज्ञान होगा कृष्ण का जरूर, बहुत ऊंचे हैं, दूर तक दृष्टि जाती है, ये कृष्ण को देखे होंगे कृष्ण कहाँ है। और उसमें भी बरगद आदि तो बड़े बड़े जटाधारी हैं, तपस्वी हैं, धूप सहते हैं, वर्षा सहते हैं और तीर्थ में वास कर रहे हैं। जमुना जी के किनारे सब वृक्षों से पूछ रहे हैं तो तीर्थ में वास कर रहे हैं। कोई गोपी पूछती है बरगद से, पीपल से, कि हे महात्माओं, बड़े भाग्यशाली हैं, वृंदावन में जन्म हुआ है, अवश्य आपको कृष्ण का पता होगा, आप प्रियतम श्याम सुंदर का पता बता करके हमारे जीवन की रक्षा कर लीजिए। लेकिन कुछ देर में जब हवा चलती है और वृक्ष के शिखर हिलते हैं, कुछ आवाज नहीं आती है, तो ये कहती हैं कि अरे सखी, ये भी ना ही कर रहे हैं कि हमको पता नहीं है। तो दूसरी गोपी कहती है, तो तीर्थवास से क्या होता है, जटा बढ़ाने से क्या होता है, तुम पूछ रही हो। जटा बढ़ाए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हैं और बहुत तपस्या करते हैं, मौन है, लेकिन इनको कृष्ण का पता नहीं है, सब बेकार है। तब वे सोचते हैं कि ये पुरुष जाति के हैं, अतः हम स्त्रियों से द्वेष करते हैं, ये नहीं बताएंगे, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। अब चलो अपनी जाति के लताओं से पूछें। तो सबसे पहले तुलसी जी से पूछती हैं, मान लो कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलाय विभ्रत दृष्टि प्रिय, तुलसी जी को पकड़ करके पूछती हैं, यही है पागल की तरह पूछना, कहीं पेड़ पौधा किसी का पता बताएगा। हे तुलसी, हे कल्याणी, तुमको गोविंद का चरण कमल बहुत प्रिय है और तुम श्री कृष्ण की अति प्रिया हो, अतः बताओ हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं, अवश्य तुमको पता होगा। वो भी नहीं बोले, तुलसी भी नहीं बोले, तो कहती हैं कि अरे ये तो सौत का भाव रखती है, ये सौत का भाव, सौतिया दाह है इसको, ये हमें नहीं बताएगी। तो दूसरी लताओं से पूछो, फिर पेड़ से पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, फिर पृथ्वी से पूछने लगी कि हे माता पृथ्वी, कृष्ण जहाँ भी होंगे तुम पर ही होंगे, तुम पर ही चरण रखे होंगे, तो तुमको अवश्य पता होगा। जैसे हमारे शरीर किसी अंग पर कोई कीड़ा हो तो हमको पता होगा ना कि हाथ में रेंग रहा है या पैर में है, कहाँ है, तो माता पृथ्वी को अवश्य पता होगा कृष्ण कहाँ रेंग रहे हैं। मैं गलत उदाहरण दिया कीड़े का, तो कृष्ण तो परम आनंद घन है, लेकिन जहाँ भी होंगे पृथ्वी पर होंगे। तो इनसे पूछते तो वो कहते हैं, तुम्हें बहुत पुलक छाया है, पौधों में अंकुर है, फूल उगे हैं, तो तुम्हें बहुत पुलक है, तुम्हारे शरीर में रोमांच हो रहा है, ये प्रीतम श्याम सुंदर के चरण कमल के कारण, आखिर बामन बन करके उन्होंने जो तुमको नापा था इस कारण से तुमको पुलक है, अथवा बारह शरीर से कृष्ण ने तुम्हारा आलिंगन किया था उसके कारण आलिंगन है क्या। पृथ्वी कुछ बोलती नहीं है, फिर आगे चलती है। तो एक हरिणी मिल गई, हरिणी की पत्नी, तो ये कहती है कि अरे हरिण पत्नी, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर इधर से गए हैं क्या, तुम्हारे शरीर में इतना रोमांच है, तुम इतना खुश हो, लगता है कि प्रियतम के दर्शन से ही तुमको सुख हुआ होगा। वे अपने सौंदर्य से सभी जीवों के हृदय में आनंद की बाढ़ उत्पन्न करते हैं, तुम अवश्य देखी होगी। लेकिन हरणी भी बेचारी नहीं बोली, तो परिचय देते हैं, देखो हमारे प्रियतम कैसे हैं हम बता रहे हैं। बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्म, वे अपने बाई भुजा को अपनी प्रिया कंधे पर रखे होंगे, रख कर चलते हैं, और दाहिनी भुजा में कमल लिए रहते हैं, प्रिया जी की सेवा करते हैं, राधा रानी की, राधा रानी के मुख पर भंवरे मंडराते हैं उसकी सुगंध से, तो श्री कृष्ण उस कमल से उस भंवरों को हटाते रहते हैं, तो दाहिने हाथ में कमल लेकर चलते हैं, और स्वयं उनके वनमाला पर भंवरे मंडराते रहते हैं उनके शरीर पर। क्या इधर से गए, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे वृक्षों, ये बताओ तुम लोगों ने जब प्रणाम किया प्यारे श्याम सुंदर को, तो तुम्हारे प्रणाम का अभिनंदन किया उन्होंने, पेड़ झुकते थे गोपियों के सामने, भैया श्री कृष्ण के सामने, तो ये समझ गए कि प्रणाम कर रहे हैं। तुमने प्रणाम किया होगा श्याम सुंदर को तो वे बड़े शिष्टाचारी हैं, अवश्य तुम्हारे प्रणाम का उत्तर दिए होंगे। तो अभी अभी इधर से निकले हैं क्या, बताओ। इस तरह से पूछती हुई जा रही थी, कहीं कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था। तो वन में एक जगह पर जाने पर सूक्ष्म बालुका के कण थे, ब्रज धूली थी, धूली में श्री कृष्ण के चरण कमल उभरे हुए थे। व्यचक्षत बनो जैसे पदानी परमात्मा न, परम प्रिय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे थे। तो गोपियां आपस में अब तो एक भाव की हो गई हैं, चाहे चंद्रावली जी हों चाहे ललिता जी हों, सब एक साथ चल रही है, क्योंकि अब सब पर विपत्ति है, कृष्ण का विरह है। तो अब आपस का द्वेष खत्म हो गया, सब कृष्ण के लिए मर रहे थे। देख करके पहचान लिया, और ये लोग देखने लगे चारों तरफ से हैं। पदानी व्यक्त मेतानी नंद सुंदर महात्मना लक्षण ते ही ध्वजा ध्वज वज्रांकुर जवाद। ये पद चिन्ह है, निश्चित ही हमारे परम प्रिय श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि चरण चिन्ह में देखो ध्यान से, ध्वज वज्र अंकुश जव कमल आदि दिखाई दे रहा है। बहुत छोटे छोटे चरण चिन्ह थे, एक चरण चिन्ह में कमल वज्र ध्वज अंकुश और छोटे छोटे थे, लेकिन चंद्रमा की किरण में तो दिखाई दे रहे थे। माता पृथ्वी इसको मिटने नहीं देती है, चरण चिन्ह रखती है सुरक्षित। तो कहती व्यक्तम, स्पष्ट है कि ये चरण चिन्ह हमारे श्याम सुंदर के हैं। तो उस चरण धूलि को अपने मस्तक पर रखने लगे। धन्य अहो अमीयाल गोविंद आग जब रेण वह जान ब्रह्मेश्वर अमा देवी दधुर मुर्धा नग्न। तब तक आगे गई तो देखती हैं कि साथ में एक स्त्री गई है, स्त्री का चरण चिन्ह है। तो जो विरुद्ध जुथ वाली गोपियां हैं जैसे चंद्रावली जी इत्यादि, वे सब लगे कर वही प्रश्न की कि एक किसका चरण चिन्ह है, कौन स्त्री साथ में जा रही है कृष्ण के। कस्या चैतानी प्रदानी जताया नंद सुनना अंश लेस्त प्रकोष्ठाया करेड़ो करेड़ा जता। जैसे हथनी चलती है, हथनी के मस्तक पर गले में हाथी का सूंड रहता है, वैसे श्याम सुंदर अपने बाएं हाथ को इसके कंधे पर रख करके चले हैं। देखो कृष्ण के बाएं भाग में स्त्री चल रही है। तो चरण चिन्ह से पहचान गई कि ये स्त्री का चरण चिन्ह है। स्त्री का चरण छोटा छोटा होता है, और उसमें भी राधा रानी का चरण क्यों नहीं पहचाना। तो पहचान ली थी, कहती है ये किसका चरण चिन्ह है, ये कौन जा रही है। ये कौन कपटनी है, ये धूर्त स्त्री कौन जा रही है। अपने फेरे में डाल करके श्याम सुंदर को उनका अधरामृत पी रही है, जबकि सब गोपियों का धन है अधरामृत, यह अकेले उसको पी रही है। ये बहुत दुष्टा है, ये कौन है, कौन पूछ रहे थे। तो सब पहचान रहे थे कि कौन है, कौन स्त्री है जिसको कृष्ण लेकर के गए हैं, सब पहचान रहे चरण चिन्ह। तब ललिता जी आगे बढ़कर कहती है अनया राधितो नूनम भगवान हरिदीश्वर। यह वह स्त्री है जिसके द्वारा भगवान हरि ईश्वर आराधित हुए हैं, और इसी से इस पर प्रसन्न होकर के गोविंद हम सबको छोड़ करके इसको लेकर के गए हैं। तो ललिता जी भी साफ स्पष्ट नाम नहीं बोलने कहती है कि यह वह स्त्री है जिसने श्री कृष्ण की आराधना किया है। आराधना का अर्थ होता है परम सुख देना, आनंदित करना, इसको आराधना कहते हैं। आराधयति इति राधा, जो आराधना करे वो राधा है, अथवा आराध्यते या सा राधा कृष्णेन इति, कृष्ण के द्वारा जिसकी आराधना हो वो है राधा। भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी की आराधना करते हैं, कृपा याचना करते हैं, इसलिए भी वृषभानंदिनी को राधा कहा जाता है। और कृष्ण की आराधनाएं करती हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा, वास्तव में दोनों एक दूसरे के आराधक हैं। श्याम सुंदर अपने को राधा रानी का दास कहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, और राधा रानी कहते हैं मैं श्याम सुंदर की दासी हूँ, हम तो दासी नित्य तुम्हारी, मैं आपकी दासी हूँ। वे कहते हैं कि मैं आपके चरणों का गुलाम हूँ। तो यही भाव चलता है। तो राधा का जो भी अर्थ किया जाए निष्पत्ति व्याकरण के अनुसार, तो ये इस श्लोक के द्वारा सिद्ध हुआ कि इस गोपी का नाम राधा है। अनया राधितो नूनम भगवान हरेश्वर। तो श्री राधा रानी का एक प्रकार से स्पष्ट उल्लेख यहाँ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो वैष्णव हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे तो कभी संदेह कर ही नहीं सकते। तो प्रश्न होता है कि तो सुखदेव गोस्वामी ने राधा नाम क्यों नहीं लिया? वैष्णव लोग लिखे हैं टीका में कि सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाना था, अगर वे बीच में राधा नाम का उच्चारण करते, कभी किए थे पहले, तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती थी। 6 महीना में समाधि में रहते थे, तो वैसे समाधि मग्न हो जाते तो कथा नहीं कह पाते, इसीलिए वे श्री राधा नाम का उच्चारण नहीं किए। तो कारांतर से यहाँ नाम आया है परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम परम धन है, सर्वोपरि है। हमारे महामंत्र में भी हरा शब्द जो है वो राधा रानी का ही नाम है, और इसी को संबोधन में 8वें कारक में हरे कहते हैं। हरा को जब पुकारेंगे तो हरे हो जाएगा, सीता को पुकारेंगे तो सीते कहेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग ए हो जाता है, आकारांत जिसमें आ हो, जैसे राधिका तो उसको राधिके कहेंगे, हरा को हरे कहेंगे। तो महामंत्र में भी 8 बार हरे शब्द हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सोलह बार हो गया ना। तो हरे कृष्ण कृष्ण के साथ हरे शब्द ठीक है, और राम राम का अर्थ है कि योगियों का चित्त जिनमें रमण करता है, जो परम सुंदर है, उनको राम कहते हैं। या वे सबके हृदय में रमते हैं, सबको प्रसन्न कर सकते हैं, आनंद घन है, उनको राम कहते हैं। तो ये राम जो शब्द है यह अभी श्री कृष्ण के लिए ही है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका अर्थ किया है। सर्वान रमयति इति राम, अथवा गोपियों को रमाते हैं, गोपों को रमाते हैं, सबको प्रसन्न कर सकते हैं, आनंद समुद्र है भगवान, रसराज, तो उनको राम कहते हैं। तो उनके साथ भी हरे राधा रानी है, हरे राम 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 हरे है। श्रील प्रभुपाद जी इस महामंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हरा भगवान की शक्ति है, ये ऐसी प्रार्थना है महामंत्र की, बच्चे के क्राइंग के समान है। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान की शक्ति, हमको इस प्राकृतिक जगत से ऊपर आध्यात्मिक जगत में उठा लो। इसीलिए महामंत्र का विशेष महत्व है। इसमें राधा रानी का हरा नाम आया है। हरा का क्या अर्थ है? हरा का अर्थ है श्री कृष्ण मनोहरा, जो श्री कृष्ण के मन को हर लेती हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो त्रिभुवन में सबका मन हरते हैं। बड़े बड़े आत्मालाम मुनियों का मन हर लेते हैं। किसी को चरण की सुगंध से हर लिए, जैसे सनकादि को, रुक्मिणी का चित हर लिए अपने गुण श्रवण से, सुखदेव गोस्वामी का मन हर लिए अपने कथा द्वारा, गुण द्वारा, सौंदर्य द्वारा, सबका चित हर लेते हैं। लेकिन ऐसे परम आकर्षक भगवान का चित भी श्रीमती राधा रानी हर लेती हैं। इसीलिए इनका नाम ही है हरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आज इन्हीं राधा रानी का, जो श्री कृष्ण की आराधिका भी हैं और आराध्या भी हैं, जन्मदिन है। और वैसे प्राकट्य भूमि रावल गांव है। ब्रज में सब लोग गए तो रावल गए होंगे। रावल में प्रकट हुई थी। और योनिजा है, ये कमल के फूल पर प्रकट हुई थी। और इनका जन्मोत्सव मनाया गया बरसाने में। राधाष्टमी बहुत बड़ा उत्सव होता है। हम तो जब से होश हुआ तब से बरसाने में ही रहते थे, लेकिन इस बार प्रिया जी ने नहीं चाहा यहाँ होना। जो भी जैसे रखें ऐसे रहना है। तो इस प्रकार इस प्रसंग में सबसे श्रेष्ठ गोपी और जो भगवान की आराधना की है, इसके द्वारा नाम का साफ पर्दाफाश हो गया है कि राधा ही है। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरे बनवारी। वृंदावन बिहारी गुलाम है राधा रानी के, कृपा की याचना करते हैं। किसी भक्त पर जब प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि वे उनसे सिफारिश करती हैं, कहती हैं कि इसको अपना लीजिए। तो राधा रानी की आज्ञा को भगवान टाल नहीं पाते हैं। ऐसे परम महिमामय दिन में हम लोगों को राधा रानी की कृपा की याचना करनी चाहिए। ऐसे श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत संदेह है सबको। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति हमसे पूछा, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ है ना, हाँ, तो रुक्मिणी को क्यों नहीं रखते हो, राधा को क्यों रख लिए पास में, राधा को क्यों रखते हो, क्या नाता है राधा। ऐसे अटपटांग बोलने लगा, राधा को मत रखा करो, रुक्मिणी को रखो चाहे सद्भावना को रखो। तो इस तरह से लोग बोला करते हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण में और उनमें कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है। तो अभेद की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, उनसे दूर नहीं है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, अग्नि से उसको अलग नहीं किया जा सकता, और अलग कर दिए दाहिका शक्ति तो अग्नि का अग्नित्व खत्म हो गया। राधा रानी बिल्कुल कृष्ण के साथ, कृष्ण से अलग नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने तो सारे संसार में राधा रानी को ही कृष्ण के साथ स्थापित किया, सब जगह राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा माखन चोर, राधा बांके बिहारी, कई जगह स्थापित किया। नैरोबी में राधा बांके बिहारी है, कई जगह बस राधा राधा। हम लोगों के तो राधा रानी है सर्वस्व है। वृंदावन में रहने वाले सभी भक्त जानते हैं कि वहां तो कृष्ण भी लगता है कि गौड़ है। कभी व्यवहार में फोन पर जैसे तैसे राधे 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 ऐसे करते हैं। वृंदावन में आप अगर हरे कृष्ण कहिए तो समझे विदेशी गुटका है। चाहे नंद गांव हो, बरसाने हो, वृंदावन, गोवर्धन, सब जगह राधे राधे। हाँ, मथुरा में थोड़ा सा चलता है जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और हरे कृष्ण ये कहीं है। श्री मतलब राधा रानी, श्री और श्री के साथ कृष्ण, तो उसका अर्थ राधा कृष्ण है। और हरे कृष्ण का भी अर्थ राधा कृष्ण है। हरे कृष्ण कहें चाहे श्री कृष्ण कहें, ठीक ही है। आज रावल में जय जयकार, बहुत से पद लिखे गए हैं। महाभाव कलोलनी छोटी सी पुस्तिका है, उसमें राधा रानी के जन्मोत्सव के बहुत से पद गीत लिखे गए। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जब थे गोरखपुर में, राधाष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत विशाल बृहद रूप में। सौभाग्य मिला हुआ है राधाष्टमी में भाग लेने का। वहाँ मीरा रोड में भक्त कह रहे थे कि यहाँ भी राधा रानी है, राधा गिरधारी तो यहीं पर की है। तो मैं कहा कि गिरधारी जी की कथा मैं कह चुका हूँ मायापुर मीरा रोड में। हमें प्रिया जी का प्रसंग रास लीला के अंदर है, इसलिए रास बिहारी जी की सेवा करना चाहता हूँ वहाँ के भक्त। आप लोगों की शुभकामना से मैं कुछ बोल सका नहीं, काफी है। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधा नाम का इतना प्रभाव है, उच्चारण करते थे लीलाएं याद आती थी। प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी को समाधि क्यों लग जाती थी। ये तो नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि उनको समाधि लग जाती थी। राधा नाम का इतना आकर्षण है, भगवान श्री कृष्ण राधा नाम को बांसुरी में बार बार गाते रहते हैं। ये राधा नाम का स्पेशल प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे, जब उनके घर पर कोई साधु महात्मा आते थे तो प्रभुपाद जी से प्रणाम कराते थे और साधु से कहते थे इसको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। हमेशा ये बात होती थी। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे राधा रानी के भक्त निकले जो संपूर्ण विश्व में राधा रानी को भर दिए। वृंदावन की बात बता रहा हूँ। एक दिन एक माता जी आई थी मिलने के लिए, आती रहती हैं, अम्मा अम्मा कहते हैं। एक मथुरा के चौबे जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्ण से शिकायत करूंगा कि आपको इन्होंने ऐसा रोग दिया। तो हमने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो भगवान का प्रसाद है। तो कहा कि नहीं नहीं ऐसे प्रसाद हुआ, मैं जरूर कहूंगा, भेंट होगी तो। तो माता जी कहती हैं क्या कहकर करोगे, कृष्ण से कुछ मत कहो, उसका ही स्वभाव है, वो डालता ही रहता है भक्तों को, अपने भक्तों को दुख में डालता रहता है कृष्ण। और तुमको चाहिए राधा रानी से कहो, वे डांटेंगे कृष्ण को कैसा क्यों करते है। वो बोल रही थी राधा रानी को कहो। तो पंडित जी कहे चौबे जी की हाँ ठीक कहती है, ये भाव मतलब बता रहा हूँ कि राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। Thank you.